ओ नमः भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक नंबर 21 और 22 दो श्लोक है। बोर्ड में एक श्लोक लिखा गया। भूतेषु विरुद्भ्या उदुत्तमा ये सरीसृपा स्तेषु सबोधो निष्ठः ततो मनुष्यः प्रमथा स्तत् अपि गंधर्व सिधा विबुधानुगा ये। पहले ये श्लोक उच्चारण कर देते हैं, फिर बाद में दूसरा श्लोक में पढ़ लूंगा। सिर्फ भूतेषु विरुद्भ्या उदौतमा ये सरीसृपास्तेषु सबोधो निष्ठः ततो मनुष्या प्रमथास्ततो अपि गंधर्वसिदा विविधानुगाये भूतेषु विरुद्धभ्या उदौत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधो निष्ठः ततो मनुष्या प्रमथास्ततो अपि गंधर्वसिधा विविधानुगाये भूतेषु विरुद्भ्या उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधो निष्ठः ततो मनुष्या प्रमथास्ततो अपि गंधर्वसिधा विबुधानुगाये शब्दानुवाद। भूतेषु समस्त उत्पन्न जीवों में चाहे चर हो या अचर हो, विरुद्भ्या पौधों से उदउतमा कहीं अधिक श्रेष्ठ ये जो सरीसृप रेंगने वाले प्राणी तथा सर्प तेषु उनमें से सबोधनिष्ठ हुए जिन्होंने बुद्धि विकसित कर ली है ततः उनमें से मनुष्याः मनुष्य प्रमथाः भूत ततःपि उनसे भी श्रेष्ठ गंधर्व गंधर्व लोक के वासी देवलोक में गायक के रूप में नियुक्त सिद्धाः सिद्धलोक जिसमें योग शक्ति रहती है विबुधानुगा किनरगण ये जो देव देवता असुरभ्य असुरों की अपेक्षा मघवत प्रधाना इंद्रादि दक्षादय दक्षादि ब्रह्मसुता ब्रह्मा के पुत्र तो तब तेषाम उनमें भवः भगवान शिव परः श्रेष्ठ स वह अतः आगे विरंच विरज ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने से स वह मतलब ब्रह्मा मत परः मेरा भक्त अहम मैं दीजो देव देवः ब्राह्मण का उपासक अथवा ब्राह्मण का भगवान। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। आवाज ठंडी पड़ रहा है, ज्यादा ठंडी नहीं है वृंदावन में है भी है, फिर भी आवाज ठंडी आ रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। दोगे तो जय होगा। दो प्रकार के प्रकट शक्तियों आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव और शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधा जड़ पदार्थ जो कि पत्थर और पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ है। इन अचर व पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ है। कीटों तथा सरीसृप से पशु श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य से भूत प्रेत क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व श्रेष्ठ है और गंधर्व से सिद्ध श्रेष्ठ है। सिद्धों से किन्नर और किन्नर से असुर श्रेष्ठ है। असुरों से देवता और देवताओं से स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि राजा दक्ष और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा के पुत्र है इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माना जाते हैं क्योंकि वे मुझ भगवान के अधीन है। क्योंकि मैं भगवान ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। सब जितने सब आप सुन लिया सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य इस श्लोक में ब्राह्मण का पद ईश्वर से भी बढ़कर बता गया है। भाव यह है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। यद्यपि ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति की तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मण की राय लेनी पड़ती थी। ईश्वर की उपासना ब्राह्मण्य देव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मण अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी है। यहाँ ब्राह्मण जाति का नहीं वरन यह योग्य ब्राह्मण का सूचक है। ब्राह्मण में 8 गुण होने चाहिए जिनका उल्लेख श्लोक नंबर 24 में हुआ है। यह है साम दम सत्य तितिक्षा इत्यादि ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में प्रजातंत्र प्रणाली में न तो कार्यकारी अधिकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, न वह योग्य ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है। फलस्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को कृष्ण भावना मूर्त की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासन चुन सके। यदि राज्य का प्रमुख योग्य ब्राह्मण हो तो सब कुछ ठीक रहता है। इस श्लोक में विकासवाद का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है, क्योंकि इसमें भूतेषु विरुद्ध्य का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास वनस्पतियों घास पौधों तथा वृक्षों से हुआ, जो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। दूसरे शब्द में पदार्थ में शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के जीव रूप में प्रकट हो। इस तरह जीवन पदार्थ से प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से। जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में 10वां अध्याय 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वम प्रवतन्ते, मैं समस्त वैकुंठ तथा मर्त्यलोक का कारण हूँ, मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। शक्तियाँ दो प्रकार की है, भौतिक तथा आध्यात्मिक, और ये दोनों मूलतः श्री कृष्ण से उद्भूत है। श्री कृष्ण परमात्मा है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवित शक्ति पदार्थ से उत्पन्न है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए पदार्थ मूलतः परम व्यक्ति मतलब आत्मा से उत्पन्न हुआ। नित्यो नित्यो नाम चेतस चेतन चेतना नाम। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वह ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण परमब्रह्म का उपासक है और परमब्रह्म ब्राह्मण का उपासना करता है। दूसरे शब्द में भक्त परमेश्वर के अधीन और ईश्वर अपने भक्तों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ब्राह्मण को दिव्य देव कहा जाता है और ईश्वर को दिव्य देव देव अर्थात ब्राह्मणों के देवता कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन है कि विकासवादी की व्याख्या है, उसमें कहा गया है कि दो प्रकार के जीव है, जड़ तथा चेतन। चेतन जीवों में पक्षी पशु जलचर मनुष्य इत्यादि परिगणित है। इनमें से मनुष्य को सर्वत्र उत्कृष्ट माना गया है, किंतु इनके संख्या अल्प है। इन थोड़े से मनुष्य में निम्न श्रेणी के मनुष्य कई है, जथा म्लेच्छ है, पुलिंद है, बौद्ध है, सवर है। मनुष्य में वैदिक नियम को मानने वाला श्रेष्ठ है। इनमें से सर्व वर्णाश्रम धर्म वैदिक नियम को मानने वाले कम है। इनमें से अधिकांश सकाम कर्म करते हैं या उच्च पद प्राप्त करने के लिए पवित्र कर्म करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित जतति सिद्ध है, अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है। जत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चन व्यतीत तो हो, अनेक ज्ञानियों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है, और ऐसे लाखों मुक्त ज्ञानियों में से कोई एक कृष्ण भक्त बनता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रन मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजतं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में आप सभी को कृष्ण मलारका मंदिर का ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। स्पेशल एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हमारा बीच में प्रभुपाद डिसाइपल जो कि मनु प्रभु, उनके लिए स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बहुत दिन से ये शीर्षक जो है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की पंचम अध्याय भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। भागवत में बहुत सारा उपदेश आता है, लेकिन ये जो ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया ये आस्तिक उपदेश है। एक नास्तिक उपदेश होता है, एक आस्तिक उपदेश होता है। ये भागवत में दोनों वर्णन है, नास्तिक भी उपदेश है, आस्तिक भी उपदेश है। एक बाप बेटा को नास्तिक बनाना चाहता है, ये भागवत में वर्णन है। कौन बाप बेटा को नास्तिक बनाना चाहता था, कौन बोलेगा? मालूम है, हिरण्यकश्यप। ये तो बाप है, प्रहलाद महाराज को नास्तिक बनाना चाहता था, लेकिन भरत महाराज को आस्तिक बनाने के लिए ऋषभदेव स्वयं इसी प्रकार के पिता। जगत में ऐसा पिता मिलना गिने चुने करोड़ों में ऐसा एक ही पिता मिलेगा तो बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं। क्योंकि आप भारत में कोणा कोणा में चला जाइए कौन पिताजी बोलता है अपना बेटा को भक्त बनने के लिए? कभी नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा? कभी नहीं। अभी का टाइम पे क्या है, पिताजी जो नरक में है बेटा को उसी नरक में लेकर जाना चाहता है। इसी प्रकार स्थिति है, वो चाहते बाप बेटा नरक में जाएंगे, दोनों फुटबॉल वहीं खेलेंगे। अभी संसार में प्रत्येक पिता नास्तिक बन चुके हैं। क्यों इसको बोल रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार लोक से मैं मिल चुका हूं। भागवत पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, गीता पढ़ते भी नहीं, गीता तो प्रचार करना दूर की बात है। हमारा भक्त लोक में भी सभी का श्रद्धा होना चाहिए, गीता जितना प्रचार करते हैं, प्रचार का शास्त्र है पढ़ने का, पढ़ने का जरूरत है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है अपना भक्त बनने के बाद। हम तो बहुत सारा, हमें अपना खुद को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। जिस दिन दीक्षा हो जाता है हमें बहुत बड़ा अपना खुद भक्त मानते हैं, सही है कि नहीं? हमेशा के लिए वो पद तक, भक्त का पद तक आने के लिए हमें करोड़ जन्म हमको लग सकता है। भक्त का पद तक आने के लिए ये शिक्षा है भागवत की। भागवत कहने का नहीं है, इसको हृदय में धारण करने का, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसको हृदय में धारण करना। जहां से सुन लिया हृदय में धारण करना भागवत, भागवत का रहस्य है। एक ही पिताजी बेटा को नास्तिक बनाते हैं, एक ही पिताजी हाँ बेटा को आस्तिक बना रहा है। तो आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक में कौन किससे बढ़कर है, ये श्लोक का वर्णन नहीं आता है ना, कौन किससे बढ़कर, और सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, किसको माना गया? जो शिव भक्त होंगे बोलेंगे शिव जी को, जो ब्रह्मा जी के भक्त होंगे वो ब्रह्मा जी को बोलेंगे। लेकिन भागवत क्या प्रमाण दे रहे हैं, लास्ट में श्रील प्रभुपाद तो मेंशन कर दिया ऑलरेडी, क्या किया बताया है लास्ट टाइम बताते, स मत परो अहम दीजो देव देव। ब्राह्मण को पूज्य मानता हूं, भगवान स्वयं कृष्ण भी ब्राह्मण को पूजा करते थे, इसलिए कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय। और ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद बहुत कोटेशन किया, बहुत कोटेशन। आपको गूगल में सर्च कीजिए, इसमें लिखिए नमो ब्राह्मण देवाय, लिखोगे आ जाएगा। और प्रभुपाद की चर्चा बहुत सारे महाराज लोग का साथ किए, मेरा खुद का गुरु महाराज के साथ बहुत कॉन्वर्सेशन किया, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का साथ। ब्राह्मण क्वालिटी कैसा लाना है, ब्राह्मण का योग्यता क्या है, ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जात में कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसको कोटेशन किया। ये वृंदावन की बात है, वृंदावन में प्रभुपाद अपना रूम में बैठ के बात किया, 1977 का बात है, महाराज के साथ वार्तालाप। और लॉस एंजलिस में भी बात किया अलग अलग, हाँ पप्पा डिसाइपल अपना डिसाइपल को, कभी कभी मॉर्निंग वॉक में। और ये श्लोक का ऊपर, ये श्लोक में कम से कम आपको 50 कोटेशन मिलेगा, नमो ब्राह्मण देवाय। ये जो श्लोक है सभी को मालूम है, लेकिन ये श्लोक कहां से आया कौन बता सकता है, किसी को मालूम नहीं होगा। मैं तो काल कंफ्यूज हो गया था, इसको पढ़ रहा था मैं कंफ्यूज हो गया था, ये श्लोक कहां से आया। नमो ब्राह्मण देवाय हम बोलते हैं हमारा कुछ, और ये आप भगवान को भोग लगाने के टाइम पे किसको मालूम नहीं है, ये श्लोक उच्चारण करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते थे, एक विदेशी भक्त था, बोले प्रभुपाद जी हम तो बनाना बाहर से लाए और भगवान को कैसा ऑफर करेंगे, अभी ट्रेन में सफर में है, कभी फ्लाइट में बैठे है, कभी गाड़ी में बैठ कर जा रहा है, तो भगवान बोले ऐसा हाथ में ले लेने का बनाना को, ऐसा हाथ में ले लेने का, और नम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नम नम, ऑफर हो गया, भगवान इमीडिएटली भोजन कर लिया। इतना बोल के बस आप जो नया होते हैं उनको ये श्लोक बोलते हैं आप ऑफर करने के लिए। तब कहने का अर्थ था ये श्लोक कौन सा भागवत से आया कि गीता से आया कि और कोई पुराण से आया, किसको मालूम है। हम इतने दिन से भागवत सुन रहे हैं तो बताइए किसको मालूम है, नहीं तो वह लिखिए विष्णु पुराण से आया है ये श्लोक, विष्णु पुराण से आया, प्रभुपाद ने इसको कोटेशन किया। भागवत में ढूंढते ढूंढते परेशानी हो गए, भागवत में नहीं है ये श्लोक, हम सोचते ही भागवत के श्लोक है। अलग अलग श्लोक प्रभुपाद अलग अलग जगह पे कोटेशन करते हैं जहां पे जरूरत पड़ता है श्लोक। तब यहां पे कहते हैं कौन किससे श्रेष्ठ है, और सबसे माना जाता है ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और ब्राह्मण से सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन है ब्राह्मण से सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण भक्त। कृष्ण मतलब वैष्णव, विष्णु भक्त ये सबसे, और विष्णु भक्त और सर्वश्रेष्ठ है एकांतिक निष्ठ भक्त, इससे और सर्वश्रेष्ठ। जैसे हम बोलते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण, सत्यगुण से और एक ऊपर है शुद्ध सत्यगुण। शुद्ध सत्यगुण कब होता है, जब हमें भगवान को भोग लगाते हैं वो शुद्ध सत्यगुण हो जाता है, और हमें जब सत्यगुण में रहने के लिए सत्यगुणी खाद्य खाना पड़ता है, मतलब शाकाहारी भोजन करते हैं वो सत्यगुण कहा जाता है सत्यगुणी खाद्य। लेकिन भगवान को भोग लगने के बाद शुद्ध सात्विक गुण ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार सबसे उच्च स्तर भक्त क्या है, एकांतिक एक निष्ठ भक्त, ये सर्वश्रेष्ठ है। तब कहते हैं कौन किससे श्रेष्ठ है, चेतनशील और अचेतन में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अजीव तथा अचेतन पदार्थ समूह से सजीव तथा सचेतन जीव समूह श्रेष्ठ है। अजीव अर्थात शुक जीर्ण तृण से सजीव तृण अर्थवा तद अपेक्षा पर्वत श्रेष्ठ है। महाभारत में शांति पर्व में वर्णन है दर्शन श्रवण घ्राण और स्पर्श शक्ति जिस वृक्षा में है तद अपेक्षा श्रेष्ठ है वृक्ष से गंध देवी, मतलब पुष्प आदि। इसका बाद सूक्ष्म कीट श्रेष्ठ है, उससे शब्द देवी मतलब जलचर प्राणी, उससे श्रेष्ठ है रूप देवी मतलब ज्ञान संपन्न, जैसा ज्ञान संपन्न कौन है कौवा चिड़िया उनसे श्रेष्ठ है, और उनसे उत्तम दांत वाले विशिष्ट सर्प जैसा ये लोग श्रेष्ठ है, उनसे बहुपद प्राणी जो होते हैं वो श्रेष्ठ है, जैसा भ्रमरा भौरा होते हैं ना उसे श्रेष्ठ है। इसका बाद उनसे श्रेष्ठ है चतुष्पद प्राणी चार पैर वाला गाय भैंस आदि सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ है मनुष्य। इसे जो हम लोग 84 जोनी को हिसाब करते हैं ना, जलजन अवलक्षण स्थावरा विंशलक कहती कुरमया रुद्र संख्याकार, इसके बाद पक्षिणा दश लक्षक 30 लक्षणी पशव चतुर्लक्षणी मानवा, सबसे मनुष्य प्राणी कितना है सबसे कम है। और ये मनुष्य का अंदर फिर आएगा किसी प्रकार। देखिए इसमें सिस्टमेटिकल है, कैसा होता है, दो होता है स्थावर और जंगम, इसको कैसा डिवाइड किया जाता है स्थावर और जंगम। यहाँ पे होता था ब्लैक बोर्ड में पेन पेपर होता था, मैं फिर आपको दिखा सकता था यहाँ पे मतलब नोट करके, लेकिन फिर भी आप लोग कोई पेन पेपर में लिखते हैं तो नोट कर सकते हैं। स्थावर और जंगम दो साइड, जंगम और स्थावर। स्थावर जंगम से सृष्टि कैसा होता है, स्थावर से स्थलचर प्राणी सृष्टि होते हैं और जंगम से जलचर और साइड में हो गया आकाशचर। ये तीन नहीं, जंगम और स्थावर से तीन हो गया, जलचर स्थलचर और आकाशचर, मतलब नेभचर बोलते हैं। और स्थलचर से मनुष्य आते हैं, स्थलचर का जो प्राणी होते हैं वो होते हैं मनुष्य। मनुष्य फिर दो भाग बन जाते हैं, कैसा, एक ही आर्ज्य एक ही अनार्ज्य। अनार्ज्य को डिवाइड नहीं करते हैं, आर्ज्य को फिर डिवाइड करते हैं। आर्ज्य से फिर क्या होते हैं, धर्माचारी और अधर्माचारी, ये डिवाइड किया जाता है। फिर धर्माचारी से अधर्माचारी को छोड़ दिया, फिर धर्माचारी से कर्मनिष्ठ निकलते हैं, कर्म करने वाले, धर्म में रहते हैं लेकिन कर्म करते, कर्मनिष्ठ भक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार इस प्रकार कर्मनिष्ठ से फिर निकलते हैं सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, फिर निष्काम कर्मी से ज्ञानी, निष्काम कर्मी से ज्ञानी, ज्ञानी से मुक्ति, मुक्ति का बाद फिर कर्म जोगी और कृष्ण भक्त, लास्ट में आता है कृष्ण भक्त। ये हमारा स्तर है, ये जो बता रहा हूं ये स्तर है, लेयर है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा गोल क्या है, ये समझाने के लिए हमें कहाँ से किसी प्रकार आते हैं धीरे धीरे करके। पहले हम लोग को मालूम था क्या धर्म क्या है अधर्म क्या है, कुछ नीति नियम मालूम था, कुछ नहीं, घर पे जैसा चल रहा था ऐसा ही हम लोग चल रहे थे, सही है कि नहीं। जिस प्रकार उड़ीसा में आज पूर्णिमा है, मालूम है आज पूर्णिमा है ना, नहीं मालूम है कौन सा पूर्णिमा आप लोग बोलते हैं, पांडु पूर्णिमा आज उड़ीसा में पकवान बनता है इस प्रकार। और कहते हैं मार्गशीर महीना का ये लास्ट, ये है मतलब एंड हुआ, मतलब ये पूर्णिमा, तो मार्गशीर महीना में लक्ष्मी पूजा किया जाता है उड़ीसा में, लक्ष्मी पूजा करते हैं। वो रीति रिवाज है, वही रीति रिवाज अभी भी चलता है, वही रीति रिवाज अभी भी चलता है। लक्ष्मी की पूजा करेंगे, नारायण पूजा नहीं करते हैं, कब नारायण सुखी लक्ष्मी खुशी होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं होंगे। एक गांव में प्रवचन था, मैं गया था, मतलब हो गया 10 साल का पहले का बात, बोले लक्ष्मी पूजा के लिए आप लोग को हम लोग को स्वागत किया है, आप लोग आइए थोड़ा, हमें कीर्तन प्रतन किया थोड़ा, तब उनको प्रवचन में बताना पड़ा। पति का साथ पत्नी से नारायण का साथ लक्ष्मी, लक्ष्मी के नारायण को पूजा करके तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक संतुष्ट होंगे, और लक्ष्मी पूजा कर रहे हो नारायण साथ में नहीं है, तो ये हम लोग इसी प्रकार पहले जो चल रहा है इसी हिसाब से हमें चला रहे थे, जब तक हमको कुछ मालूम नहीं था। हम भी पहले से भगवान को प्रणाम कैसा करते थे मालूम था क्या, जब शास्त्र अध्ययन पढ़ते हैं, सत्संग में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है। जब सत्संग में नहीं बैठोगे, भागवत श्रवण नहीं करोगे, तब कुछ तक मालूम नहीं पड़ेगा। अपना मनमानी से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, गड्ढा में गिरोगे, ये सब कुछ प्रवचन से हमको मिलता है। इसलिए सत्संग में आना जरूर चाहिए, सत्संग में बैठना जानना चाहिए, तब इसी प्रकार कृष्ण भक्त सबसे उच्च स्तर माना जाता है। फिर हमका यहाँ पे प्रश्न आता है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन है, इसमें महाभारत में वर्णन है, जात कर्मादि भिर्जस्तु संस्कार संस्कृत सुचि वेदाधर्ण संपर्ण षटसु कर्म सो अवस्थित शौच चार स्थित सम्यक बीघ साशी गुरु प्रिय नित्य व्रति सत्य पर सवै ब्राह्मण उच्यते। भरद्वाज महाराज पूछते हैं और भृगुजी इसमें उत्तर देते हैं महाभारत में, जो जात कर्मादि संस्कार के द्वारा संस्कृत एवं शौच संपन्न वेदाध्ययन रत जजन जाजना आदि छठ कर्म परायण शौचो आचर्षित गुरु के पास उच्चिष्ट भोजी गुरुप्रिय नित्य व्रत परायण तथा सत्यनिष्ठ है, उसको ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का अंदर गीता में 9 क्वालिटी दिया गया। इसलिए ब्राह्मण का जब दीक्षा लेते हैं हम लोग, तब तो ये श्लोक बोलना होता है, सम दमस तपसोच ख्यांतिर्यार्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये श्लोक ब्राह्मण का क्वालिटी, ये क्वालिटी अपना जीवन में उतारने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, उतारने के लिए। भक्त होते हैं तो जनेऊ धारण करने के बाद जिस दिन दीक्षा हो गए हमें ब्राह्मण बन गए, कोई मंत्र जंत्र मालूम है कि नहीं और ये सब कुछ व्रत को पालन किया कि नहीं किया। ये जो सम दम तप शौच, आपका शौचता पवित्रता सत्य बोलना, ये सब ब्राह्मण का क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपका अंदर प्रकट हो जाना चाहिए, जिस दिन दीक्षा लिया उसी दिन आपका अंदर ये प्रकट हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं द्विज उत्तम। तो ब्राह्मण का क्वालिटी है और ब्राह्मण का अंदर है वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव कोटि कोटि सर्व वेदांतिक ब्राह्मण के गुरुदेव है। फिर कहते हैं भक्ति संदर्भ में कहते हैं ब्राह्मणानाम सर्वेभ्य सत्र जाजी विशिष्यते सत्र यादि सहस्रेभ्य सर्व वेदांत परम सर्व वेदांत विधि कोटय विष्णु भक्त विशिष्यते वैष्णवना सहस्रेभ्य एकांतिक विशिष्यते। सहस्र ब्राह्मण की अपेक्षा एक जागिंग के ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यज्ञ करने वाले। सहस्र जागिंग के ब्राह्मण का अपेक्षा सर्व वेदांत शास्त्रज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ है और कोटि कोटि सर्व वेदांत पढ़ने वाले शास्त्रज्ञ की अपेक्षा एक विष्णु भक्त सर्वश्रेष्ठ है और सहस्र विष्णु भक्त की अपेक्षा एकांतिक भक्त निष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। अब सोचो अभी तो बहुत सारे ब्राह्मण है जो कि यज्ञ करते हैं, है कि नहीं, यज्ञ करते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, शादी कराते हैं, बहुत सारा यज्ञ का ब्राह्मण इनसे बढ़कर होते हैं वेदांत वेद पढ़ने वाले। आप देखिए वृंदावन में बहुत सारे वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण आके पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप चला जाइए वहां पे बनारस, कितने पढ़ते हैं। हरिद्वार में चला जाइए वेद पढ़ने वाले, वो क्यों पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करने के लिए। यहाँ पे कि छोटे बच्चा आता है हमारा मंदिर डेली आता है, मंगल आरती आता है, सभी आता है, किसी के साथ बात नहीं करता है। मैं उनसे पूछा था वाला, प्रभु जी आप इधर क्या कर रहे हैं, ना वेद पढ़ रहा हूँ। मैला क्यों पढ़ रहा हूँ, ना पैसा कमाने के लिए, सीधा बोल दिया, बोला पैसा कमाने के लिए। ये है तो उनका ज्ञान कहाँ तक होगा, पैसा तक वो ज्ञान है, बस पैसा मिल गया वही ज्ञान ज्ञान से खत्म। तब फिर गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं ब्राह्मण की महिमा। ये द्रुहन्ति द्विजान मूढ़ा संति ते मम श्रतर जे पूज्यन्ति विप्राश मम भावेन भोजना ते भुजन्ति सुखम चात्र हन्ति जास्यति मत पदम। जो अविवेकी जन ब्राह्मण से देश रखते हैं वे मेरे शत्रु है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। गर्ग संहिता में भगवान स्वयं कह रहे हैं जो विवेक शून्य व्यक्ति ब्राह्मणों से देश रखता है, मतलब ब्राह्मण से का शत्रु बनता है, ब्राह्मण का संपूर्ण दोष देखता है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य मेरी भावना से ब्राह्मण की पूजा करता है उन्हें संसार में सुख की उपलब्धि होती है, ब्राह्मण की पूजा करने मात्र से, और अंत में वो मेरे धाम को अधिकारी होता है, वो धाम को मेरा धाम को प्राप्त करता है। इसलिए स्वयं भगवान वहां पे विष्णु पुराण में जो नम ब्राह्मण देवाय, पहले ब्राह्मण शब्द लाते हैं नम ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं उनको पूजा करता हूं। सुदामा ब्राह्मण था ना, सुदामा ब्राह्मण था, सुदामा का पैर धोए थे भगवान, स्वयं भगवान अपना सिंहासन में बैठा के ब्राह्मण का सेवा पूजा कैसा करना है, ऐसा किया। फिर आपका मन में प्रश्न आएगा अभी कलयुग में कैसा ब्राह्मण है, फिर भी बताऊंगा, मेरा हाथ में समय है, मैं इसलिए समय को देख के बोल रहा हूं। कलयुग में कैसा ब्राह्मण होता है, तब भगवान स्वयं ब्राह्मण का सेवा किया। नम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, और गाय का पूजा, गाय को डेली पूजा कीजिएगा। हम तो सिर्फ भी गोवर्धन का पूजा का दिन और गोपाष्टमी का दिन ऐसा दिन में चला जाता है पूजा करने के लिए। भगवान कृष्ण डेली उनका गोबर उठाना, गो सेवा करने में मस्त रहते थे और डेली आरती करना भगवान का सेवा पूजा में। कोई गाय का चीज कमी नहीं होना चाहिए, गाय का सेवा में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। भगवान ऐसा सेवा करते थे कभी भी गाय का ऊपर से जो चमड़ी होता है चमड़ी से कभी लोम गिर गया था तो भगवान बहुत दुख प्रकाश करते थे, इतना दुखी हो जाते थे। अब सोचो भगवान गाय का प्रति कितनी भावविष्ट होकर सेवा करते थे और हमारा धरती में तो क्या हो गया, हमारा धरती में क्या हुआ, अभी गो हत्या हो रहा है, ऐसे असुर सभ्यता संपूर्ण आ चुका है। इसलिए प्रभुपाद जी भावार्थ में ये श्लोक भावार्थ में व्याख्या करते हैं, ऐसा राजा बनाना चाहिए ब्राह्मण का क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए पहले राजतंत्र शासन चलता था, राजा ऐसा होता था देश को चलाने का शक्ति और खुद का आचरण करता था, उच्चारण का अनुसार आचरण और सारा जगत को शिक्षा देता था, खुद करता था और शिक्षा देता था, करा के दिखाता था, वो राजतंत्र शासन था। अभी और राजतंत्र शासन नहीं, अभी कैसा शासन है, अभी कैसा शासन है, प्रजातंत्र शासन, प्रजा जिसको चुन लिए बस। प्रजातंत्र शासन में देश का हानि हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद यहां पे मेंशन करते हैं भरत मानदेव इसी प्रकार धरती को चला सकते थे। इसलिए ऋषभ देव ने अपना पुत्र को संपूर्ण वही उपदेश दिए, बोले बड़ा भाई का सेवा कीजिए। आप देखिए त्रेता युग में भगवान राम का तीनों भाई सेवा में निमग्न है कि नहीं, लक्ष्मण को देखिए, भरत महाराज को देखिए, शत्रुघ्न को देखिए, उनका कर्तव्य कैसा है। राम को जब 14 वर्ष वनवास मिल जाता है तब भरत महाराज इमोशन मतलब क्या होता है, दुखी हो जाते हैं, रोना रो लेते हैं और माँ को अपना माँ को गाली देते हैं, आप बांझ भी बन जाता था मेरा के लिए कोई मुश्किल नहीं होता था, मैं क्यों आया आपका गर्भ में। भरत महाराज ऐसा महसूस करते थे, बड़ा भाई को आप वनवास जो हमारा पितृतुल्य है तो हमारा जीवन धिक्कार है। तो इसी प्रकार अभी का टाइम पे तो छोटा भाई बड़ा भाई का गर्दन उड़ा देता है, अभी थोड़ी थोड़ी बात का ऊपर, थोड़ी थोड़ी बात का ऊपर, कहां भी चला जाइए थोड़ी थोड़ी बात का ऊपर, कोई जमीन का गड़बड़ी हो गया, कोई घर का गड़बड़ी हो गया। और बुरा नहीं मानना माताओं लोग, सत्य घटना यह है, क्या है परिवार में पांच भाई का अंदर इतना संघर्ष नहीं होता है, पांच भाई का अंदर कभी संघर्ष नहीं होता है, पांचों भाई कि चारों भाई कभी संघर्ष नहीं होता है। जिस दिन माता एक माता आ गया उसी दिन झगड़ा, बुरा नहीं मानना, सभी लोग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो भक्त लोग समझ के भक्ति के था और वो परिवार में कुछ नहीं, लेकिन ये सब कुछ इसी प्रकार स्थिति अभी कौली युग में प्रवेश और कर रहा है भी, और आगे जाकर क्या होगा। और बता रहा हूं कौली युग के ब्राह्मण का लक्षण, यह है चैतन्य भागवत में, राक्षस कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म जोनिषु उत्पन्ना ब्राह्मणा कुले बाध्यन्ते श्रुतियान कृशान। पूर्व युग में देव द्विज द्रोही जो असुर थे, जो असुर थे वे सभी राक्षसगण कौली युग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए एवं इस कुल में उत्पन्न होकर जिनके 10 प्रकार के संस्कार विद्या अभ्यास आदि क्षीण हो गए वे सभी वेदज्ञों को बाधा प्रदान करेंगे। ये कौली युग में इसी प्रकार के ब्राह्मण है। एई सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र एई सब लोक जमा जात नार पात्र कलि युगे राक्षस सकल विप्र घरे जनि बेक सुजने र हिंसा करिबारे ए सब विप्र स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्रे सर्वथा निषेध करिबार। ये चैतन्य भागवत की बंगाली है, उड़िया में भी है। तब कहते हैं भजन विहीन ब्राह्मण नाम मात्र के ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण भजन नहीं करता है नाम में ही ब्राह्मण है, बस जिनो धारण करके ब्राह्मण है बस। ये वास्तव में दैत्य दानव है, साथ ही जम जतना के पात्र है। पूर्व पूर्व युग में देव द्विज द्रोही जो राक्षस थे, वे कलि युग में ब्राह्मण का घर पे जन्म लेकर सोजन से द्वेष करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को स्पर्श करना, प्रणाम करना तथा उनसे बात करना धर्म शास्त्र में निषेध है। आप बताओ, इसलिए वो ब्राह्मण से दूर रहना और अच्छा है। इसलिए तो प्रभुपाद कहते हैं अभी हमारा कोई भी धाम में चला जाइए, कोई भी मंदिर पे चाहते हो, पहले ब्राह्मण क्या करता है पहले हाथ बुलाएगा ना, बोला आइए, आप चलेगी उनका पास, माला लेके, माला दिए, माला का बाद क्या बोलेगा, पहले क्या बोलता है, चढ़ावा, पहले चढ़ाइए, आप चढ़ाएंगे तो मैं हम भी आपको चढ़ाएंगे पहले चढ़ाइए, इस प्रकार। और फिर भगवान का पास से माला चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा, बस ऐसा करके सामना में जाएगा। बस आप देखिए बहुत सारा मंदिर पे भगवान को ऑफर करते कि नहीं करते। चलो प्रभुपाद यहां पे संस्था में शिक्षा देने के लिए जो भी माला आता है भगवान को चढ़ाते हैं, पूरा परफेक्ट है, डायरेक्टली भगवान ग्रहण करते हैं। तब आप भेंट चढ़ाए उनको, माला का ऊपर दान दिया, इसका बाद वो माला चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे आके फिर आपसे बोलेंगे हमारा चढ़ावा करें। ब्राह्मण कभी दान नहीं मांगते हैं, आप सो खुशी में, जो रियल ब्राह्मण होते हैं अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी है। आप उनका चरण पद धो तो कर पान कीजिए जल, देखिए फिर। और कलि युग में 99% ब्राह्मण इसी प्रकार जो कि असुर परिवार में, असुर घर पे जन्म लेके ब्राह्मण का सिर्फ जेनो मतलब थ्रेड धारण किया है। इसलिए कहते हैं भागवत में, भगवत गीता में वर्णन आता है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उससे कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य नाम प्रभुपाद मेंशन करते हैं, मनुष्य नाम सहश्रेषु कश्चित जतोतिषिदे जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिनाम व्यतीत ततः। नर सहस्र मुह सनहु पुरारी को 1000 धर्म व्रत धारी कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान सकृत कोई लहई। हजार हजार मनुष्य का अंदर एक ही सिद्ध पुरुष मिलेंगे, हजार हजार सिद्ध पुरुष का अंदर एक ही क्या मिलेंगे, मनुष्य नाम सहस्र कश्चित जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिनाम व्यतीत ततः। तत्व जानने वाले, कृष्ण का तत्व जानने वाले व्यक्ति मिलेंगे, और हजार हजार तत्व जानने वाले व्यक्ति का अंदर एक ही कृष्ण भक्त मिलेगा। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, प्रमाण कर रहा है करोड़ करोड़ विरक्त हो सकते हैं, लेकिन जो श्रवण करके कृष्ण का बारे में श्रवण करके वो कृष्ण भक्त बन चुका है, वो करोड़ में एक मिलेंगे। कोई सहस्र मानवों में सिद्ध करना ठानता उन जत्नशीलों में मुझे कोई जथावत जानता। सहस्र सहस्र मानव का अंदर सिद्ध पुरुष और हजार हजार सिद्ध पुरुष का अंदर जत्नशील होके भगवान का सेवा में कोई जथावत जानकारी मिलता है, कोई जथावत सेवा करता है, नहीं तो नहीं। इसलिए हम लोग ये शास्त्र पढ़ के, शास्त्र को जान के, जानना चाहिए शास्त्र को जान के हम लोग अपना जीवन में उतार है, तब हमारे ये जो जन्म मृत्यु चक्र छूटेगा, नहीं तो जन्म मृत्यु चक्र से नहीं छूट सकता है। जन्म मृत्यु चक्र से छूटने के लिए शास्त्र पढ़ो, शास्त्र को समझो, समझ के अपना जीवन में उतारो, अपना जीवन में उतारो। लोग ऊपर देखते देखते पढ़ की चला जाते हैं बस, इसका अंदर का जो रस को आस्वादन नहीं कर पाते, और रस को आस्वादन नहीं करते और रस को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसे रहस्य क्या है, हमारा अधिकार नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए। स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी नरलीला करने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको मनुष्य शरीर दियो। ये चैतन्य महाप्रभु का लीला में वो स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी भी प्रार्थना किए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, और ये मर्त्य जगत पे ये जन्म मृत्यु चक्र से छूटने का कैसा प्रमाण दिया जाता है। शुद्ध भक्ति सिर्फ मानव जोनि में होता है। स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी मध्य उन्होंने भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि यह मानव जोनि में सफल होता है। इसलिए ब्रह्मा शिव जी भी भगवान भक्त का अवतार लेकर इसी धराधाम में आते हैं। तब शिव जी ब्रह्मा जी भी नलिया में स्व पार्षद बन के आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतीर्ण होते हैं तब ब्रह्मा जी को प्रार्थना पूर्ण होता है। ब्रह्मा जी स्वयं क्या बनकर आते हैं, क्या बनकर आते हैं, हरिदास बनकर आते हैं। और स्वयं शिव जी जो सदाशिव अंश होने का नाते चैतन्य महाप्रभु का लीला में श्री अद्वैत आचार्य का रूप में चैतन्य लीला में सहाय करने के लिए आते हैं, नर लीला करने के लिए, और मनुष्य रूप धारण करके ये धरती पे आके मनुष्य जोनि कितनी सर्वश्रेष्ठ है आप सोचो, ये शास्त्रगत प्रमाण है, इसलिए जानना चाहिए ये सारा चीज को। इतना सभी शास्त्र में वर्णन है, इसलिए और आप लोग सभी शुद्ध भक्त है जो कि वृंदावन धाम में रह रहा है। कभी वृंदावन धाम का बाहर जाओगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा हम तो साल में लगभग कितना बार जाना पड़ता है, फिर भी लोग को समझाने के लिए वहाँ पे जाओगे तो आपको रियल मालूम पड़ेगा बाहर में है क्या। वृंदावन में आपको पता नहीं चलता है क्योंकि ये राधारानी का नगरी है, राधा धाम है, राधा का धाम है, इसे मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ आते हुए ऑटोमेटिक भक्ति जागृत होता है ऑटोमेटिक, और डेली भागवत सुनने वाले का भागवत डेली सुनिए और डेली श्रवण करके अपना जीवन में उतारिए, और भागवत जरूर आप लोग को पढ़िए। जो व्यक्ति भागवत पढ़ता है ना स्वयं राधारानी उसको सहायता करते हैं। आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में दो मिनट समय ले रहा हूँ, कैसा राधारानी सहायता करते हैं। पहले बताया था एक बार एक ही बाबा ने, यही वृंदावन का घटना, एक ही बाबा ने हर दिन भागवत पढ़ता था, डेली भागवत पढ़ता है, उसका सामने कोई बैठे नहीं बैठे लेकिन भागवत पढ़ता है। तब एक व्यक्ति आया, उसको मजाक उड़ाया, बोला आप किसको भागवत सुना रहे हो। उन्होंने बोला मैं राधारानी को भागवत सुना रहा हूं। बोला अच्छा, तब बाबा धीरे हर दिन पढ़ता है। तब जब बाबा बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया होने का नाते आंखों दिखाई नहीं दिया, तो भागवत नहीं पढ़ पाया उसी दिन रो रहे, क्या करूं मैं आज भागवत नहीं सुना पाई राधारानी को। तब स्वयं कृष्ण राधारानी स्वयं भेजते हैं कृष्ण को ग्वाल बाल का रूप में, बचपन का रूप में गोप बालक बन के कृष्ण आते हैं। बाबा का सामने खड़े होते हैं, बाबा को पूछते हैं बाबा क्यों रो रहे हो। बाबा ने बताते हैं, बोले मैं आज भागवत नहीं पढ़ पाई। बोला क्या हो गया। बोला आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं आज मैं भागवत नहीं पढ़ के राधारानी को नहीं सुना पाई, मेरा जीवन ये धिक्कार। तब कृष्ण गोप बालक बन के आते हैं, एक ही कपड़ा देते हैं, छोटी से कपड़ा देते हैं, बोले ये कपड़ा ले लीजिएगा, आपका आंख में बांध के सो जाइए, कल का सुबह को ठीक हो जाएगा। बाबा ने बच्चा का बात को विश्वास करता है क्योंकि बच्चा का बात हमेशा विश्वास होता है। अब देखो घर पे कभी झगड़ा होता है तो वो बच्चा बता सकता है क्यों झगड़ा हुआ, किसी कारण था। आप वो बोलते हैं बच्चे को बोलते हो ए किसको नहीं बोलना है, लेकिन बच्चा इमीडिएटली बोल देगा। उसी प्रकार बच्चे का सरल स्वभाव देखिए, तब वह बच्चा बोलता है। तब गोप बालक सरल हृदय से बोलने, बोले ये कपड़ा लेके लगा लीजिए। और बूढ़ा बाबा का पूरा क्या हुआ, विश्वास हो गया, वो कपड़ा हाथ से ले लिया और आँख में पट्टी लगा के सो गया। तब गोप बालक तो जा चुके थे, पट्टी लगाकर सो के सुबह उठते हुए सारा दृश्यमान होता है, सभी दृश्यमान होता है, सब दिखाई दिया। दिखाने के बाद बाबा ने सोचने लगा ये जो छोटे बच्चा था क्या लेकर आया था, वो पट्टी लेकर, वो पट्टी में क्या चमत्कारी है जो ये पट्टी मेरा आंख का दृश्य को खोल दिया, ये पट्टी में चमत्कारी क्या है। तो पट्टी खोल कर देखता है, वो पट्टी का ऊपर स्वयं लिखा हुआ राधे राधे, ये देखिए भाव, आप भगवान को सुनाइए, भगवान स्वयं भागवत बांकमयी सदृश है, तब बांकमयी सेवा करना है तो भागवत पढ़िए सुनाइए। स्वयं राधारानी सुनना चाहते, स्वयं कृष्ण सुनना चाहते अपना वाणी को, हमें सुनने के लिए आए नहीं आए, हमको समय मिले नहीं मिले, किंतु कम से कम पढ़ो। आपको सहायता करने के लिए स्वयं राधारानी है, स्वयं कृष्ण है, भगवान राम है, जगन्नाथ है, चैतन्य महाप्रभु है, भगवान स्वयं सहायता करना चाहते हैं। भगवान का सेवा में इसी प्रकार नियुक्त, दृढ़ता का साथ शास्त्र पढ़ो, शास्त्र समझो, अपना जीवन में उतारो और शास्त्र बांटो, जिसको देते हो उनको बोलो कम से कम पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना समय देने के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सम्वेत गौर भक्त वृंद की, निदाई गौर प्रेमानंदे। कोई भी त्रुटि रहा आप लोग का वांछा कल पत्र भेष कृपा सिंधु भय वच पतिदान पावन भय बेष्ट में भो नमो नमः।